गायत्री मंत्र, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उसकी क्या मीनिंग है, इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं गायत्री मंत्र, तो मेरे साथ एक बार मिलकर बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3:62:10 और यजुर्वेद में भी 3:35 में मिलता है। प्राचीन काल से आज तक जितने भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, ऋषि मुनि तपस्वी साधक, इवन घर में जो सामान्य आम लोग जब अपनी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, तो हम इस गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। जितने लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जब साधना है ना, तपस्या, ऑस्टेरिटी, उन सब में भी गायत्री मंत्र का ही प्रयोग करते हैं ओम के साथ। ओम को प्रणव कहते हैं। आप जब इंडिविजुअल प्रेयर करते हैं, जिसको हम संध्या और उपासना कहते थे, तो वो संध्या उपासना में भी पहले हम गायत्री मंत्र से ही शुरू करते हैं। जब बच्चे का जनेऊ संस्कार होता था, मतलब अगर उसको कंटेम्प्रेरी वे में बोलें, जो बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, तो उसका इनिशिएशन किया जाता था, एक संस्कार करते थे, सेलिब्रेशन होता था कि बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है। तो जो पहली बार स्कूल जाने के लिए जो सेरेमनी की जाती थी, उसको उपनयन संस्कार कहा जाता था, जिसमें बच्चे को एक जनेऊ पहनाया जाता था एज ए साइन ऑफ स्टूडेंट लाइफ। और उसको पहनने के बाद जो पहली उसको लेशन दी जाती थी घर में, वो ओम के साथ गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद वो बाकी पढ़ाई करते थे। ये जो मैं कहता हूं करते थे, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ हिंदुओं को पता ही नहीं तो करना क्या, पर उसके बावजूद भी बहुत लोग करते हैं, जिनको अपने धर्म अपने कल्चर के बारे में अवेयरनेस है, प्राउड फील होती है, स्टिल दे आर डूइंग इट। इसीलिए इसको गुरु मंत्र कहा जाता था। गुरु मंत्र का ये नहीं कि आप किसी बाबा के पास गए कान में मंत्र जो फूंकता है, वो तो हिपोक्रेसी है और मार्केटिंग है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। और जाते हैं वही जो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड हो और मेंटली वीक हो, इंटेलेक्चुअली जीरो हो, ऐसे ही लोग बाबा के पास जाकर के मंत्र दीक्षा लेते हैं और बाबा उनको ठेठ भाषा में बैं उल्लू बनाते हैं, एंड बोथ आर हैप्पी विद दैट। आप समझाओ नहीं समझने वाले, ना भक्त समझने वाला, ना गुरु समझने वाला, सो बोथ आर हैप्पी। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, वी आर कपिंग द रियल गुरु, जो आपको पढ़ाता है, सिखाता है, ज्ञान देता है। आपके स्कूल के टीचर हो, कॉलेज के टीचर हो, यूनिवर्सिटी के टीचर हो, प्राचीन काल में गुरुकुल के अध्यापक, जो भी प्राचीन काल की जो सिस्टम था गुरुकुल, उसमें जो टीचर्स होते थे, तो वो उसकी पढ़ाई के समय जो पहला शिक्षा दी जाती थी, वो गायत्री मंत्र की दी जाती थी। इसलिए इसको गुरु मंत्र कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि अब आज मंत्र समझेंगे तो उसमें जिस भगवान के जिस रूप की चर्चा है वो सविता है, तो सविता देव से प्रार्थना की गई, इसीलिए इसका नाम सावित्री मंत्र भी होता है। तो आप प्रश्न पूछेंगे, गायत्री मंत्र का क्या भाव है, इसको गायत्री क्यों कहते हैं? इसकी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं। जितने जो मंत्र होते हैं वो किसी ना किसी मीटर में होते हैं, क्योंकि वो गाए जाते हैं, मीटर समझते हैं, जो लैंग्वेज पढ़ते हैं छंद है ना, हिंदी में छंद, अंग्रेजी में मीटर। एक पर्टिकुलर रिदम के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उस रूल्स रेगुलेशन के बेस पर जब कोई रिदम बनाने के लिए जो कोई सेंटेंस को बनाया जाता है, उसको छंद कहते हैं। तो ये मंत्र गायत्री छंद में लिखा गया है, इसीलिए इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। ये वाली लाइन आपको जानना बहुत जरूरी है, कि ये मंत्र गायत्री छंद में लिखा गया, इसीलिए गायत्री मंत्र कहते हैं। अब कहेंगे इस बात को इतने चिल्ला के क्यों बोलते हो, इसमें क्या नई चीज है? बहुत सारी नई चीजें हैं, क्योंकि जैसे कि आम हिंदुओं में एक प्रॉब्लम है, तो वो गायत्री के मंदिर बना के गायत्री देवी की भी पूजा करना शुरू कर दिया है। सो दैट्स हाउ यू शुड नो व्हाट इज द गायत्री। वेदों में गायत्री जस्ट एक मीटर है, इस मीटर में लिखा गया, इसलिए छंद है। तो कोई गायत्री देवी मां कहीं नहीं है, जो कि आजकल काफी सारे हिंदू लोग पूजने लग जाते हैं। तो इसीलिए जब हमारे हमारी इग्नोरेंस का, इल्यूजन का फायदा उठा के कुछ लोग जो मार्केटिंग करते हैं, तो हमें लगता है कि रिलीजन यही होता है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी होता है, एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, लिटरेसी बहुत जरूरी है, खास करके रिलीजियस लिटरेसी तो बहुत जरूरी है, टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ जो हिपोक्रेसी में हम फंसते हैं। तो गायत्री मंत्र में गायत्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका छंद गायत्री है। गुरु मंत्र बोलते हैं क्योंकि जब इनिशिएशन होता था तो गुरु पहला शिक्षा इससे देता था। इसकी इंपोर्टेंस आप कोई भी वेद, उपनिषद, दर्शन, महाभारत, रामायण को कहीं भी देखिए, हर जगह इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। और जो खास करके इवन टुडे भी जो रियल ऑनेस्ट स्पिरिचुअल लोग हैं, वो उनकी साधना के लिए इसको वो यूज करते हैं। अब आते हैं इसकी जो मीनिंग है समझने के लिए, एक एक पार्ट लेते हैं। ओम, पहले चर्चा हमने की थी लास्ट टाइम, ओम परमात्मा का नाम है। इसमें तीन सिलेबल हैं, औ, अम। ये तीनों परमात्मा के अलग अलग जो नेचर है, जो गुण कर्म स्वभाव है, उसको डिनोट करते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ, ऑल नोइंग है, ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान है। तो इसी तरह परमात्मा सत है, मतलब इट एग्जिस्ट फॉर एवर, चित कॉन्सियस है, और आनंद स्वरूप या ब्लिस है। तो जितने भी परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव है, उन सबको इस ओम के द्वारा बताया जाता है। और ओम एक सिलेबल है जो खुद तीन सिलेबल की कंपोनेंट है, मतलब मिलावट है, कॉम्बिनेशन है, ओम। तो इसकी चर्चा हुई है, इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। तो गायत्री मंत्र के तीन पार्ट होते हैं, भूर्भुव स्वः, इसको व्याहृति कहते हैं। उसके बाद मंत्र है, मंत्र दो सेंटेंस है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, और लास्ट पार्ट है धियो यो नः प्रचोदयात्। तो भूर्भुव स्वः इसको व्याहृति कहते हैं। व्याहृति का मतलब कलेक्टेड, समथिंग विच इज कलेक्टेड। इसमें तीन शब्द है, इसके लिए एक खूबसूरत स्टोरी है। ब्राह्मण ग्रंथ में एक स्टोरी आती है कि परमात्मा ने, जब ध्यान रखिए स्टोरी स्टोरी होती है, उसको रियलिटी से रियल मत समझिए। हमेशा बहुत सारे स्टोरी जैसे बताए जाते हैं, ऑल्दो दे आर फिक्शंस, कन्वे द मैसेज, है ना, रिटोरिक एक्सप्रेशन होता है, एक बात को कहने की तरीका होती है, उस स्टोरी को सच नहीं मानना। तो एक परमात्मा ने जब सृष्टि रचना की, सारे संसार की सृष्टि रचना की, तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको कंडेंस्ड करूं, मतलब थोड़ा और ज्यादा निचोड़, इसका निचोड़ निकालूं। तो उन्होंने निचोड़ से पृथ्वी, मतलब प्लैनेट, अंतरिक्ष जो मिड स्पेस, और आकाश स्पेस, तीनों बनाया। फिर सोचा कि नहीं, मैं इससे भी और इसका कंडेंस्ड स्वरूप निकालूं। उन्होंने और निचोड़ा तो उसमें से उन्होंने तीन वेद बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में। सोचा कि नहीं, इसको भी मैं और कंडेंस्ड करूं, तो तीन सेंटेंस बनाया, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मीन्स गायत्री मंत्र जो है वो पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए। फिर सोचा नहीं कि मैं इसको भी और कंडेंस्ड बनाऊं और निचोड़ूं, तो उन्होंने तीन वर्ड्स में बताया, वो था भूर्भुवः स्वः, जिसको व्याहृति कहते हैं। बोले नहीं, इसको भी मैं और छोटा करूं, संक्षिप्त करूं और समराइज्ड करूं, तो तीन लेटर्स में बनाया, औ, अम, जिसको आप ओम कहते हैं। तो ओम की चर्चा तो हम पिछले बार कर चुके हैं। ये जो भूर भुवः स्वः बोलते हो, ये तीन वर्ड है, भूः, भुवः, स्वः। ये जो भूः, जो हु आप सुनते हो विसर्ग, ये जब संधि हो जाती है, जब कंबाइंड हो जाता है, तो अर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट बिकम भूर, भूर भुवः स्वः। ओके, तो इसका क्या भाव है? भू संस्कृत में भू धातु का अर्थ होता है सत्तायाम एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करता है उसको भू कहा जाता है। संसार को भी भुवन बोलते हैं, ये भुवन भी उसी से बना है। तो ये किसके बारे में है? संसार में जो भी एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट करता है? तो हम भी तो एग्जिस्ट करते हैं, पर हमारी और आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। हम अपने पैदा होने से पहले नहीं थे, मरने के बाद नहीं होंगे। और दुनिया में सारे चीजें, कोई भी चीज इंक्लूडिंग द सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम है। और उनकी जो टाइम पीरियड है, किसी का बिलियन ट्रिलियन ईयर्स हो सकता है, किसी के 100 साल हो सकता है, किसी के 100 दिन भी हो सकता है, किसी को 100 घंटे। बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, ऐसे प्राणी होते हैं जो थोड़े दिन के लिए पैदा होते हैं, पर है तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, उसके एक टाइम फिक्स टाइम है। तो बनने से पहले वो नहीं थे, बनने के बाद भी नहीं रहेंगे। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इटर्नल नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो एक छोटे से पीरियड के लिए होता है। एग्जिस्टेंस उसके बारे में यूज होता है जो ऐसा कभी कोई पीरियड ऑफ टाइम रहा नहीं कि जब वो नहीं होते थे, ना ऐसा फ्यूचर में कभी टाइम होगा कि वो जब नहीं होंगे और अभी भी हैं। मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से बियॉन्ड है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उन्हीं के लिए यूज होता है जो टेम्पररी होते हैं। और वो तीन चीजें होती हैं संसार में, ये जो मैटेरियल वर्ल्ड हम देखते हैं, कॉस्मस से ब्रह्मांड से लेकर के छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं, जो धूल की कण होते हैं, या हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये सब मैटेरियल हैं। तो ये मैटेरियल वर्ल्ड जिनसे बनते हैं, जो इनके रॉ मैटेरियल है, जो सबसे शटल पार्टिकल है, सूक्ष्म परमाणु है, जिसको हमारे यहां सत्व रज तम कहा जाता है, वो सत्व रज तम गुणात्मक जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का, वो नित्य है। मतलब ये जो यूनिवर्स आप देखते हो 24 घंटे बदलता रहता है, आज पेड़ है, कल नहीं है, कल ईंट है, आज पत्थर है, कल पत्थर है, कल डस्ट बन गया, आज घर है, कल घर नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म चेंज होता रहता है। एक्चुअली वो उनकी जो एग्जिस्टेंस कभी नहीं मिटता है, जस्ट दे आर चेंजिंग देयर फॉर्म्स, परिणाम होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं। जब बहुत शटल फॉर्म में चले जाते हैं हम उसको पार्टिकल्स के रूप में कहते हैं, जब बहुत ग्रॉस फॉर्म में आते हैं हम किसी ना किसी रूप में उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पर उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है, वो नित्य है। हमारे शास्त्रों में नित्य इटर्नल एग्जिस्ट करते हैं, वो भू है, इसी भू उसी को व्यक्त करता है। तो क्या केवल ये मैटेरियल वर्ल्ड ही नित्य है जो बदलता रहता है? नहीं, और भी दो चीजें हैं जो इटर्नल है। एक तो आपका हमारा जो एग्जिस्टेंस जिस पर टिका है, आपकी बॉडी तो मैटेरियल है ना, आपका बॉडी माइंड ये सब मैटेरियल होते हैं ना, मतलब मैटर से बने इन चीजों से, पर जिसके कारण वो सस्टेंड करते हैं, जिसको आप कहते हैं लाइफ, मैं हूं आप हैं, वो सोल है, आत्मा है, वो भी नित्य है। शरीर नष्ट होता है, मरता है, पैदा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, पर आत्मा नित्य है, कभी नहीं मरता। करोड़ों साल पहले भी यही आत्मा थी, आज भी है, करोड़ों साल बाद भी सेम रहेगा। और इसमें मैटर की तरह ट्रांसफॉर्मेशन वाली भी बीमारी नहीं है, मतलब इसमें कोई रूप चेंज भी नहीं होता है। बॉडी के तो रूप चेंज होते हैं, आप बच्चा होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बुढ़ा होते हैं, तो चेंज होता रहता है। आपके थॉट्स बदलते हैं, आपका माइंड बदलता है, आपकी सोच बदलता है, आपकी बॉडी बदलता है, हर चीज, आपकी स्टेट ऑफ लाइफ बदलता है, पर आत्मा सेम रहता है। ये भी भू है। एक तीसरे चीज है, वो भी भू है, वो परम आत्मा। तो आत्मा तो आत्मा है, सोल है, सेल्फ है, इंडिविजुअल जो मेरा और आपके अंदर है, जो सभी प्राणियों के अंदर है, और एक सुप्रीम सोल। परम का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, जो कण कण में है, हर जगह है, सूरज में भी, चांद में भी, मुझ में भी, आप में भी, गंदे में भी, अच्छे में भी, है ना, पानी में भी, हवा में भी, कीचड़ में भी, सब जगह फैला हुआ है, सब कण कण में है, सटलिस्ट है, सबसे छोटा है, वो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से बियॉन्ड है, हमेशा रहता है, वो भी भू है। ये वैदिक शब्द है भू। आगे जाकर इसके लिए जो शब्द बना सत्य, सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स हमारे आपकी तरह एग्जिस्ट नहीं, जो इटर्नली एग्जिस्ट करता है, मतलब नित्य है। इसी तरह दूसरा शब्द है भुवः। जो दूसरा शब्द है, भुवः शब्द की जो एटिमोलॉजी है, जो रूट से बना है, अवकल्पने, या चिंतनी, भूभा उसको कहते हैं जो चिंतन रहता है। चिंतन कौन कर सकता है, जो थॉट किस में होता है, किसी ईंट में कभी थॉट प्रोसेस हो सकता है, पत्थर में हो सकता है, सूरज में हो सकता है, पानी में हो सकता है, लकड़ी में हो सकता है, नहीं। सोचना ये एक सिम्टम है, एक साइन है, एक मार्क है किसका, कि इसके अंदर आत्मा है। जानने की, जिसमें भी जानने की एबिलिटी है, सेंस करने की एबिलिटी है, सेंसेशन की एबिलिटी है, वो सबके अंदर आत्मा होती है। आत्मा है इसका सिम्टम क्या है, क्योंकि उसमें सेंसेशन है, इसमें जानने की एबिलिटी है। इसलिए हम पेड़ पौधों में भी आत्मा हमारे शास्त्र मानते हैं, क्योंकि उनमें भी सेंसेशन है। हाँ ठीक है, लिमिटेड सोर्स में है। जहां जहां भी आत्मा होगा वहां वहां जानने की, सोचने की, समझने की या सेंसेशन जरूर होगा। और आत्मा अगर नहीं है तो वहां नहीं होगा। और कल मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए फिर इसमें ये डेड बॉडी है, सड़ने लगेगा। अब ईंट पत्थर और इस बॉडी में ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। मैं जब तक सोच पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, सेंस कर पा रहा हूं, तब तक कर सकता हूं जब तक मेरे अंदर कोई चीज है। उस चीज को हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा को चित्त कहते हैं, चेतन, कॉन्शसनेस। यही चेतन है जिसके कारण हमारा चिंतन प्रोसेस होता है। माइंड में सोचते जरूर रहे, माइंड इज इंस्ट्रूमेंट टू थिंक। डेड बॉडी का माइंड फिर कहां चला जाता है, अगर माइंड ही सोचता है तो डेड बॉडी में क्यों नहीं सोचता, तो माइंड कहां भाग गया फिर। ये माइंड भी मैटेरियल होता है, ये विजडम भी, आपकी बॉडी के जो अलग अलग लेयर्स होते हैं शटल लेवल पर, विजडम, ब्रेन, माइंड, किसी ले, पर ये तभी तक फंक्शन करते जब तक कुछ कोई उनके अंदर है, कोई इलेक्ट्रिसिटी है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके फ्रीजर में फ्रीज करता है, हीटर में हीट करता है, बल्ब में लाइट लाता है, पर इलेक्ट्रिसिटी खुद नहीं जलता है, उसके कारण से जो जिनको जो फंक्शन करना है करते हैं। इसी तरह माइंड का अपना फंक्शन है, सेंसेस के अपने फंक्शन है, विजडम का अपना फंक्शन है, बॉडी के अपने फंक्शन है, फिर ये फंक्शन करते हैं जब उनकी अपने इलेक्ट्रिसिटी हो। और वो कौन है पावर, पावर हाउस, वो है आत्मा। आत्मा चेतन होता है। तो दुनिया में दो तीन चीजें नित्य हैं, इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, संसार, आत्मा और परमात्मा। दो चीजें होती हैं जो इनमें से चेतन होते हैं, एक मेरे आप और सबके अंदर जो आत्मा है, दूसरा परमात्मा, वो भी चेतन है। उसको भूभा शब्द से कहा जाता है। आगे जाकर के जो लौकिक संस्कृत में, मतलब जो क्लासिकल संस्कृत में, उसको चित कहा गया। जो तीसरा शब्द भूर्भुवस्व में आप देखते हैं, स्व, जिसका अर्थ है ब्लिस, आनंद, व्यान। तो ये जो तीन चीजों में से, तीन तो इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक ट्रांसफॉर्म्ड होता है, बाकी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें से दो चेतन होते हैं, कॉन्शस होते हैं, चित होते हैं, और इनमें से एक होता है जो जिसमें आनंद है। परमात्मा में आनंद नहीं है। क्या मैं कहना चाहता हूं, द गॉड इट्सेल्फ इज ब्लिस। जैसे आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं ना, तो परमात्मा में तीन चीजें, तीन चीजों से परमात्मा बोलते हैं, तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को परमात्मा बोला जाता है। इटर्नलिटी, कॉन्शसनेस एंड ब्लिस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को परमात्मा, भगवान, जो भी ईश्वर, जिस भी शब्द से बोले। लौकिक संस्कृत में हम बोलते हैं सत चित्त आनंद, सच्चित। परमात्मा का सिंपल डेफिनेशन किसी को समझाना है कि भगवान कैसे डिफाइन करे, किसी को भी समझाना है तो सिंपल सेंटेंस है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद में तीन वर्ड है, सत चित्त आनंद। सत मिंत जो हमेशा रहता है, एग्जिस्ट करता है, नित्य है, इटर्नल है। चित मतलब कॉन्सियसनेस है, आनंद मतलब ब्लिस है। ये तीनों में से संसार में एक ही तत्व ऐसा है जिसमें एक सुपीरियर चीजें हैं जो और कहीं नहीं मिलता, वो है आनंद। और हम सब जो मैं आप जो आत्माएं ये आनंद को ढूंढने वाले, वी आर ऑल सीकर्स ऑफ ब्लीस। और हम ढूंढते रहते हैं, पैदा होते ही सबसे पहला काम तो हम खुशी ही ढूंढते हैं ना, जब नहीं मिलता है रोते हैं, बच्चा रोता है बड़ा होकर नहीं रोते हैं, बड़े होकर मेहनत करते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति पैसा क्यों कमाता है, घर क्यों बनाता है, पावर क्यों पाना चाहता है, पोस्ट क्यों पाना चाहता है, फ्रेंड सर्कल क्यों बनाता है, शादी ब्याह क्यों करता है, बच्चे क्यों पैदा करता है, कुछ भी हम करते हैं क्यों करते हैं, खुशी ढूंढना, खुशी मिले। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हम खुशी के लिए ही करते हैं, रिश्ता भी बनाते हैं खुशी के लिए, शादी भी करते हैं खुशी के लिए, पैसा भी खुशी के लिए, क्योंकि हमारी खुशी एट द एंड ऑफ द डे सबसे सुपर होता है। और हम खुशी ढूंढते हैं, पैसा कमाते हैं, खुशी ढूंढते हैं हर चीज में, पर जो खुशी हमें मिलती है, आनंद मिलता है, वो बड़ा टेम्परेरी होता है। हम शादी करते हैं कि खुशी मिलेगी, मिलती है 10-15 दिन, एक महीने, दो महीने, फिर शुरू हो जाती है एक्सपेक्टेशन का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां से आता है पता है ना, रिलेशनशिप में, एक्सपेक्टेशन से। मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि वो ये करती, मैं ये सोचती थी कि आप तुम ये करते, अब ये नहीं कर रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है, एक्सपेक्टेशन। तो हम खुशी ढूंढते हैं, उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, पास भी होते हैं, फिर थोड़ी दिन के बाद वो भी फेल हो जाता है, फिर ट्राई करते रहते हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं हम सब खुशी ढूंढने के मामले में मजदूर हैं। मजदूर समझते हैं, डेली वर्कर, डेली लेबर, रोज मेहनत करता है और जो मिल शाम को पैसा लाता है, दाल चावल आटा जो भी खरीदता है खाता है, अगले दिन के लिए 2-4 रुपए बचा, नहीं तो फिर मेहनत करता है। हम मेहनत करते हैं खुशी ढूंढने के लिए, थोड़ी बहुत मिलता है फिर खत्म हो जाता है, फिर ट्राई करते रहते हैं, खुशी बड़ी जल्दी निकल जाती है। और जो एब्सोल्यूट खुशी है, जो एब्सोल्यूट आनंद है, जब वो मिल जाए तो फिर खुशी ढूंढने का जो जॉर्निंग है वो समाप्त हो जाता है। उस एब्सोल्यूट खुशी क्या है, वो कहते हैं परमात्मा में हो खुशी। तो वो परमात्मा को जब पा लेते हैं, उसी का नाम मोक्ष है, निर्वाण है, परमानंद है, जो भी कहिए। तो तब व्यक्ति की जो जॉर्निंग है, जो सफर करता है, यात्रा करता है, खुशी ढूंढने का एफर्ट्स करता है, वो खत्म हो जाता है। तो परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है, इसलिए सच्चिद आनंद वैदिक भाषा में उसको कहा भूर्भुव स्व है। मैं और आप, मतलब मैं आप, मतलब हमारी जो आत्मा वो सत और चित है, वो एग्जिस्ट करते हैं और चैतन्य कॉन्शियस है, पर आनंद मिसिंग है। आनंद के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और जो मैटर है, इट्स ओनली सत, देयर इज नो कॉन्शियसनेस, नो ब्लिस। तो भूर्भुवस्व संसार के वो सब चीजों को संबात करता है। और ये तीनों के अलावा संसार में बचा क्या है, रो सब चीजें इन्हीं से बने। तो भूर्भुवस्व ये इसको कहते हैं व्याहृति। अगले मंत्र के हिस्से पर चलेंगे। मंत्र का पहला सेंटेंस है तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तो ब्रेक किया गया है, यहां आप ब्रेक देख सकते हैं, तत्सवितुः वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि। जब संधि या कंबाइंड करते हैं तो उसके कुछ फॉर्म चेंज हो जाते हैं। सवितुः देवस्य, उस सविता देव का जो वरेण्य भर्ग है वो हम धीमही धारण करें। पहले शब्द लेते हैं सविता देव का। सविता कौन है? तो सविता का जो लिटरेरी मीनिंग होता है, तो सुप्रसवैश्वर्ययो, मतलब पैदा करना, प्रसव, जो भी पैदा करने वाला है, प्रोजेनिटर है, क्रिएटर है, मेकर है, उसको सविता कहते हैं। या ऐश्वर्य जिसमें है तो भी सविता कहते हैं। सूरज को भी सविता कहते हैं, डेफिनेटली सोलर सिस्टम में सविता के कारण ही हर कोई बनता है, बिगड़ता है। जब सूरज ना रहे तो कुछ रहेगा नहीं। पर परमात्मा सविता है, इवन सूरज चांद संसार के हर वो चीज को वही बनाता है, वही ओरिजिनेटर है, वही क्रिएटर है, वही प्रोजेनिटर है, वही कॉज ऑफ द क्रिएशन है। तो हम प्रार्थना करते हैं उस सविता को, हे सविता देव। देव शब्द क्या है? देव मतलब भगवान नहीं होता है, देवी देवता। तो देव का अर्थ होता है देपो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा। मतलब देव का लिटरेरी मीनिंग होता है जो इल्यूमिनेट करता है, जो रिवील करता है, प्रकाश करता है, या जो हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, उसको देवता कहते हैं। माँ बाप को भी देवता कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। हम तो पता नहीं किस किस को देवता मानते हैं, वो तो अलग चीज है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, माँ देवता है, पिता देवता है, तुम्हारा टीचर देवता है, तुम्हें ज्ञान देने वाला देवता है। फिर इतना नहीं, फिर ये जो मैटेरियल वर्ल्ड में आप नेचर में देखते हैं, हवा, पानी, आकाश, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, नदी, नाले, इनको भी तो हम देवता मानते हैं। भगवान नहीं, गॉड नहीं, देवता का मतलब जो भी कंट्रीब्यूट करता है हमारे लाइफ में, उसके लिए जो टर्म यूज होता है हमारे शास्त्रों में, देवता कहते हैं। तो हवा भी देवता है, पानी भी देवता है, आग भी देवता है, सूरज भी देवता है। तो मनुष्यों में भी जिनका भी मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने भी मुझे इल्यूमिनेट किया है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी एकेडमिकली, किसी भी तरीके से, वो सब मेरे लिए देवता है। तो परमात्मा भी देवता है, इल्यूमिनेटर है, सारे संसार को बनाने वाला, पालने वाला, पोषण करने वाला। यहां कितने है क्रिएटर है, सबको बनाने वाले परमात्मा देवता। तुम्हारा जो वरेण्यम भर्ग शब्द देखिए, वरेण्यम भर्ग, सविता समझे, देवस्य समझे, सविता देव का पूज्य शिव कैसे, वरेण्यम भर्ग, भर्ग कहते हैं जो प्यूरिस्ट फॉर्म है, जो प्यूरिटी, एब्सोल्यूट प्यूरिटी को भर्ग कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, एब्सोल्यूट प्योर है। इसका क्या मतलब होता है एब्सोल्यूट प्योर, भाई हम एब्सोल्यूट प्योर नहीं है, हम मिक्सचर हैं। किस चीज का मिक्सचर है, जब कहते तो मैं, बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, आत्मा है, बॉडी है, बॉडी भी पांच चीजों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, वो भी तीन चीजों से बना है, सत्व, रजत, तम, जहां भी एक से ज्यादा चीज हो गए ना इम्प्यूरिटी। प्यूरिटी का मतलब उसके अलावा वहां और कुछ नहीं, शुद्ध का मतलब वहां कुछ भी नहीं, इम्प्यूरिटी का मतलब डस्ट या धूल से लेन देन नहीं, कोई भी चीज ऐसे मिलावट हो, ये घर भी मिलावटी है, 50 चीजों से बना है, कोई भी चीज बनता है ना, एक चीज बड़ा सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, लॉ ऑफ ये नेचर का लॉ, एनीथिंग विच इज मेड और क्रिएटेड इट कैन नॉट बी प्योर। क्यों, क्रिएशन के लिए कॉम्बिनेशन जरूरी होती है, बहुत सारे चीजों के मिलने से ही बनता है। आप शुद्ध सोना से कुछ बना सकते हो, प्योर गोल्ड कुछ नहीं, आपको 2 कैरेट तो कम से कम 2 कैरेट या 1 कैरेट तो कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, इफ यू वांट टू मेक ऑर्नामेंट और समथिंग। तो शुद्ध से कुछ बनता नहीं यार, जो कुछ बना हुआ है वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। अगर संसार में कोई एब्सोल्यूट प्योर है, शुद्ध है, वो परमात्मा है, क्योंकि वो किसी से बना नहीं है, ना उससे कोई चीज बना है, संसार बना है प्रकृति से, सत्व रजतम गुण वाले प्रकृति से। तो हे परमात्मा, वो जो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है, जो प्योर है, जिसमें कोई कोई किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, तुम्हारे उस शुद्ध स्वरूप को हम धारण करें। वो शुद्ध स्वरूप कैसा है, वरेण्यम, वरेण्यम का अर्थ होता है एडोरेबल। अगर लिटरेरी मीनिंग देखें, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है जिसको चुना जाता है, समथिंग विच इज चुजुन। अब जो शादी ब्याह होता है ना, तो उसमें जो दूल्हा होता है, वो दूल्हा का संस्कृत में नाम होता है वर, जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं कहते हैं वर वधु, है ना, दूल्हा दुल्हन, ब्राइड एंड ग्रूम, ग्रूम को वर बोलते हैं। अब बोलते हैं वर क्यों बोला जाता है, पहले लड़के लोग लड़कियां नहीं चुना करते थे, आजकल चुनते हैं, पहले लड़कियां चुना करते थे, स्वयंवर लड़कों का नहीं होता था, लड़कियों का होता था, लड़की ना चुले, लड़की के बिहाव से उनके मां बाप चुनते थे, जमाना बदल गया। आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, इवन 50-100 साल पहले तक भी दहेज लड़की वाले लेते थे, अब तो इंडिया में हिंदू लोग लड़के दहेज लेते हैं, सब नहीं, जब भी डाउरी होती थी तो लड़की वाले, इवन 100 साल पहले के भी इंडियन गजगेजेट देखेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ जगह आपके परदादा चार पांच पीढ़ी वालों को अगर आपके पास हिस्ट्री देखेंगे तो आपके परदादा ने दहेज दे करके परदादी को लाई होगी। तो लड़कियां चुना करते थे, इसीलिए लड़कों का जब दुल्हा बनते थे उनका नाम पड़ गया वर। यू आर चूजन बाय मी। आज आज पुरुषों की बड़ी दुर्दशा होगी घर में। और बहुतों में चुना गया है ना, बहुत लोग आए, बहुत लोगों को देखा, तुम्हें मैंने चुना है, इसीलिए उसको वर कहा जाता था। तो वरेण्यम, जो वरण करने लायक है, जो चुने जाने लायक है, और किसको आप चूज करते हो, जो आपके लिए बेस्ट होता है। तो इसीलिए वरेण्य का जो एक्चुअल सेंस है वो है कि द बेस्ट, जो सबसे बढ़िया, जो एडोरेबल है। तो वो परमात्मा सविता तुम्हारा जो फॉर्म है, जो कि बेस्ट है, एडोरेबल है, उस प्योर फॉर्म को धीम ही हम अपने अंदर धारण करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू मेडिटेट अपन दैट। तो करो ना, किसने रुका है मेडिटेट करने के लिए? कोई करेगा? बैठो मेडिटेशन में, दो मिनट के बाद दिमाग पता नहीं कहां कहां चलता है, चलता है ना। आप मांगते कब है? जब आपके पास कोई चीज कम हो। मेडिटेशन में बैठूं मन नहीं लगता, तो फिर हम परमात्मा से मांगते हैं। क्या मांगा? हे प्रभु, मैं हम तुम्हारे उस शुद्ध स्वरूप को धारण करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, पर जो नहीं बोला, जो अंडरस्टूड है, हमारे से नहीं हो पाता है। तो प्रार्थना क्या है? गिव अस दैट एबिलिटी, वो सामर्थ्य दो कि हम तुम्हारे उस शुद्ध स्वरूप पर अपने मन को टिका सकें। लास्ट लाइन, धियो यो न प्रचोदयात। तो हे प्रभु, नह मतलब अवर्स, हमारा, यह दैट, वो जो धीय बुद्धि इंटेलेक्ट प्रचोदयात, इंस्टिगेट और स्टिमुलेट करो। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को, इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट करो, इंस्टिगेट करो। क्या भाव है? देखिए, जो बुद्धि होता है ना, विजडम होता है, उसके लिए और एक शब्द हमारे यहां आता है, विवेक। विवेक का लिटरेरी मीनिंग होता है विवेचन करना, डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग कर देना। दूसरा बुद्धि शब्द का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग सेम थिंग होता है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होती है, क्लियर होती है, तो आप इजीली डिस्क्रिमिनेट कर लेते हो, ये क्या है, ये क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या जाना है, क्या नहीं जाना, क्या खाना है, एवरीथिंग। आप जब भी कुछ करते हो, एवरी मोमेंट, आप फिजिकली, मेंटली, ओरली कोई भी काम करते हो, यू हैव टू टेक ए डिसीजन। हमेशा हर चीज में, एक सबकॉन्शियस में, कभी अनकॉन्शियस में, या कभी कॉन्शियसली, हमारे दिमाग में होता है टू टेक द डिसीजन। इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तभी परफेक्ट होता है। आपकी जॉब में भी डिसीजन लेना पड़ता है, घर में भी लेना पड़ता है, खाते समय भी लेना पड़ता है, सोते समय भी लेना, एवरी सिंगल थिंग हम करते हैं, उसी से आपको डिसीजन लेना होता है। और डिसीजन लेने की एबिलिटी किससे होता है? आपकी विजडम से। इसीलिए विजडम को बुद्धि या विवेक कहते हैं। और यही विजडम है, बुद्धि है, जो हमें जानवरों से, एनिमल से अलग करता है, क्योंकि यही यही एक चीज है जो हमें बेटर बनाता है बाकी एनिमल से। क्योंकि हम चूज कर सकते हैं क्या सही है, क्या गलत है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, जानवरों में दिया है, पर वो इनबिल्ट है, बहुत हल्का सा, एक प्रोग्राम्ड है, हमारे लिए फ्री है। हम जैसा भी सोचें, अच्छा को बुरा भी सोच सकते हैं, बुरा को अच्छा भी सोचते हैं, किसी को कुछ भी। जिसकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी, जिसका विजडम जितना अच्छा होगा, जिसकी डिस्क्रिमिनेटिव पावर जितना बेटर होगा, शार्पन होगा, क्लियर होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतना बढ़िया होगा, वो उतना एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बन सकता है, अच्छा लीडर भी बन सकता है, कुछ भी बने, बेटर बनेगा। इसीलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, बुद्धि तो है, पैदा होते ही भगवान ने हमें बुद्धि दे रखी है, सबके पास बुद्धि है, बस उस बुद्धि को थोड़ा इंस्टिंक्ट, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है, डिलेमा में होते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि को प्लीज हमेशा जला के रखना कि मैं प्रॉपर डिसीजन ले सकूं। तो हमने दो दो प्रार्थनाएं कर डाली। प्रार्थना मतलब मांगना कि प्रभु हमें वो सामर्थ्य दो कि हम तुम्हारे उस शुद्ध स्वरूप पर अपना मेडिटेशन कर सकें, अपने आप को उसमें लगा सकें। दूसरी हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। तो दोनों ही मनुष्य की जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड प्रार्थना है, इसलिए इस प्रार्थना का बहुत महत्व है हजारों सालों से आज तक भी। बुद्धि को अच्छी बनाओ और मुझे ये एबिलिटी दो कि मैं फोकस्ड हो पाऊं, तुम्हारे स्वरूप पर फोकस्ड रख पाऊं। तो क्या ऐसा करने से, प्रार्थना करने से परमात्मा कर देता है इसलिए गायत्री मंत्र बोलते? नहीं, परमात्मा का काम नहीं है थोड़े ही खाली बैठा हुआ है बस कोई प्रार्थना करे अच्छा ये आ गया जो इसको दे दो, अच्छा दे दो। कोई दुकान खोल के थोड़े ही बैठा है कि भाई लड्डू चढ़ाओ चलो ये लो बुद्धि ले लो, ये केला चढ़ाओ जी ये शक्ति ले लो, ऐसा थोड़े ही होता है कि उसको पैसा की जरूरत है, लड्डू की जरूरत है और आपको सामान की जरूरत है, बिजनेस चलता है। ऐसा नहीं, परमात्मा कुछ आपका करता है धरता है, कुछ नहीं, उसके बहुत सारे काम पड़े वो आपके ये सब सुनने के लिए नहीं है। फिर क्यों करते हैं? अगर आप मंत्र को ठीक ठीक समझते हो, आप बिना मंत्र जाने भी प्रार्थना कर सकते हो दिल में जो आए, और आपने जो मांग जो आप चाहते हो ऑनेस्टली वही मंत्र में आप मंत्र पर बोल के करते हो, पर अगर ऑनेस्टली आपकी यही डिजायर है, यही इच्छा है कि मुझे यही चाहिए, अगर वो इच्छा प्रबल है, सचमुच है, ऑनेस्ट है, तो आप उसके लिए एफर्ट्स करोगे, आपका एफर्ट्स आपको फल देगा। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए कि प्रभु से प्रार्थना करके हम अपने आप को उस इकोसिस्टम में रखते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आप एफर्ट्स करते हो। तो ये गायत्री मंत्र का एक सामान्य अर्थ आपके सामने रखा, होप आपको अच्छा लगा होगा, इसका कुछ यूज करेंगे। ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।